अच्छा, अगली अब जो आयत है बहुत अहम आयत है, इसलिए कि आपको ये पता होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने दुनिया में इंसान से अगर कलाम किया है तो किस तरह किया है, ये उसका जवाब है। ठीक है, यानी वही की अकसाम कह लें या ये आप कह लें सिंपल वर्ड्स में, अल्लाह ताला दुनिया में हर एक के साथ नहीं बात फरमाते, ये उसकी शान के खिलाफ है कि हर एक इंसान के साथ अल्लाह ताला बात करना शुरू कर दें। उसने सिर्फ नबियों के साथ कलाम फरमाया, नबियों के साथ बात की, उनके थ्रू बाकी इंसानियत तक पैगाम पहुंचाया। ठीक है, लेकिन नबियों के साथ भी उसने किस तरह से कलाम फरमाया, क्या वेज थे कलाम करने के, वो वेज यहां पे हैं। बात समझ आए, पहले तो इस बात को समझेंगे इसमें हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। अब देखते हैं तीन तरीके यहाँ पे बता दिए गए जिनसे अल्लाह ताला ने इंसानों में नबियों से कलाम फरमाया, किसी के साथ एक तरीके से, किसी के साथ दूसरे तरीके से, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तीनों तरीकों से। ठीक है, ये उम्मीद है क्लियर हो गई होगी ये बात। अच्छा अब देखें, वमा कान अली बशर अन युकल्लिमहु अल्लाह, किसी बशर के लायक नहीं है ये कि अल्लाह उससे कलाम करे, समझ आई बात, अल्लाह उससे कलाम करे ये किसी इंसान के लायक नहीं। कहां वो रब्बुल आलमीन, कहां तू जर्रा एक नन्ना सा, तुम्हारी क्या औकात है कि अल्लाह तुमसे बात करे। वो कहते थे ना काफिर, अच्छा अगर आपके पर वही आती है तो हमारे पर क्यों नहीं वही आ जाती, अल्लाह हमसे क्यों नहीं कलाम करता, अल्लाह के ये लायक नहीं है कि शान नहीं है उसकी कि वो हर एक इंसान खड़ा हो जाए तो उसे बात करना शुरू हो जाए। अल्लाह चाहता तो हर एक इंडिविजुअल से बात कर लेता, इससे भी उससे भी उससे भी, लेकिन अल्लाह की ये शान नहीं है। और तुम्हारे लायक कहाँ है ये, तुम क्या इस काबिल हो। हाँ, अल्लाह ने अपने चुने हुए बंदों से बात की जो उसके बहुत पाक लोग थे, लेकिन उनसे भी कैसे कलाम किया, तो फरमाया अल्लाह ताला ने किसी बशर से कलाम नहीं किया, किसी बशर के लायक नहीं है कि अल्लाह उसे कलाम करे, सिवाय इल्ला मगर सिवाय, नंबर वन, इसको नंबर वन दे, वहीन, वही के जरिए। और ये मैं बात आपको इस सूरत की शुरू में भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, वही के मतलब यहाँ पे क्या है, वही खुफिया इशारा, खुफिया तरीके से किसी को पैगाम देना, ये होता है वही का मतलब। तो यानी क्या यहाँ पे मतलब है, यानी इल्हाम के जरिए या ख्वाब के जरिए। इसके अंडर अब आप दो चीजें लिख लें, इल्हाम और ख्वाब। इल्हाम मतलब किसी के दिल में अल्लाह ने बात डाल दी, अल्लाह की तरफ से होती है वो, लेकिन ये आम लोगों के भी हो सकती है। मसलन मेरे दिल में किसी नेकी का ख्याल आ जाए, लेकिन जो मेरे दिल में ख्याल आएगा वो जरूरी नहीं अल्लाह की तरफ से ही हो, कभी शैतान भी डाल देता है, और कभी शैतान नेकियों के भी ख्याल डाल देता है कि इसको पता होता है इस रास्ते के ऊपर जाएगा तो आगे इसको बिदात में शामिल कर दूंगा, कभी से रियाकारी करा लूंगा, इसको सारा बेड़ा गर्क कर दूंगा, इसको तकब्बुर में मुब्तला करूंगा। तो आम इंसानों के दिल में जो ख्याल आते हैं ना, वो गारंटीड नहीं है कि अल्लाह ही की तरफ से है। ठीक है, लेकिन जो नबियों के दिल में ख्याल डाले जाते हैं वो अल्लाह ही की तरफ से होते हैं, इल्हाम जिसको हम कहते हैं। और इसी के अंदर दूसरी नंबर टू चीज क्या है, ख्वाब। आम लोगों को भी सच्चे ख्वाब आ सकते हैं, आपको आते होंगे, किसी और को आते होंगे, लेकिन आम लोगों को झूठे ख्वाब, शैतानी ख्यालात भी, शैतानी ख्वाब भी आ सकते हैं। शैतान कभी कभी ऐसे ख्वाब भी दिखाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे साहब अकराम से पूछा करते थे कि तुम्हें क्या ख्वाब आया सुबह को फजर के बाद, तो एक दफा एक सहाबी ने फरमाया कि या रसूलल्लाह मुझे ख्वाब आया है आज रात के, मेरा सर कटा हुआ और मेरा सर आगे आगे भाग रहा और मैं उसके पीछे पीछे भाग रहा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये शैतानी ख्वाब है, इसको मेरे सामने ना बयान किया करो इस तरह के शैतानी ख्वाबों को। तो आम इंसानों को, चाहे वो सहाबा हो, चाहे वो ताबईन हो, चाहे कोई कितने नेक भी हो, लेकिन शैतानी ख्याल भी आ सकते हैं। इसी तरह हमारे रोजमर्रा जिंदगी के भी जो काम होते हैं, मतलब हमारा एग्जाम है कल, या हमारा कोई और ऐसा कोई मसला फंसा हुआ है कहीं, तो उसके बारे में ख्वाब आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हमारे जहन के ऊपर तारी होते हैं, इसलिए उस चीजों के ख्वाब हमें आते हैं। तो आम इंसानों को अल्लाह की तरफ से भी ख्वाब आता है, जो कि अब वही वैसे नबूवत खत्म हो चुकी है। ठीक है, नबूवत, अब कोई नबी नहीं आएगा, لیکن نبوت کا ایک حصہ جو باقی ہے نا وہ یہ مبشرات ہیں، یعنی سچے خواب، سچے خوابوں کی صورت میں اللہ کی طرف سے بشارتیں آتی ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ کوئی آپ کا مقام دکھا دیتا ہے، یا پھر آپ کو کسی اور کا، آپ کے کسی جاننے والے کا ایسا اونچا مقام اللہ تعالیٰ دکھا دیتا ہے، تو یہ ہو سکتا ہے. اچھا یہ دو چیزیں میں آپ کو بتا دی، الہام اور خواب کس کے انڈر آ گئے؟ وحین کے. تو ایک اللہ کا طریقہ اس طرح سے ہے اپنے نبیوں سے بات کرنے کا، کہ یا تو الہام اللہ کی طرف سے ہی، اور یا خواب، جتنے خواب نبیوں کو آتے ہیں وہ سب سچے ہوتے ہیں، ان کے پاس شیطان نہیں آتا. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا ذبح کرنے کا اپنے بیٹے کو، اب کوئی اور انسان کہہ دے جی مجھے بھی خواب آ گیا میں اپنے بیٹے کو ذبح کروں، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے معاف کرے، ایک دفعہ ایک ایسی خبروں میں آیا تھا ایک بندے نے اس طرح ہی ذبح کر دیا اپنے بیٹے کو، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. تو یہ شیطانی خواب ہے، شیطانی، پیغمبر کو شیطانی خواب کبھی نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے؟ تو ان کا خواب بھی وہی ہوتا ہے. اچھا نمبر ون یہ وحی کی بات ہوگی جس کے اندر ہم نے دو باتیں دیکھ لی. نمبر ٹو، او من ورائے حجاب، یا اللہ تعالیٰ کس طرح کلام کرتا ہے اپنے بندے سے، اپنے نبی سے، جتنے نبی گزرے ان میں سے کسی کسی سے اللہ نے ورائے حجاب بھی بات کی ہے، حجاب کے پیچھے سے بھی بات کی ہے، یعنی پردے کے پیچھے سے اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ بات فرماتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سامنے نہیں ہوتے، کوئی واسطہ نہیں ہوتا، کوئی فرشتہ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ بات فرماتے ہیں. اس کی مثال میں آپ کو دیتی ہوں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی بالکل بات. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا جب وہ موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے، کس طرح اللہ تعالیٰ ان سے کلام فرماتے تھے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کلام فرمایا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معراج پہ کلام فرمایا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہمیں مثالیں مل جاتی ہیں من ورائے حجاب کی. لیکن اس میں یاد رکھیں، کبھی بھی کسی نے اللہ کو سامنے دیکھ کے اللہ سے کلام نہیں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس کو سامنے کھڑا کر کے نہیں کلام فرمایا، یعنی من ورائے حجاب ہی ہمیشہ ہوا ہے، کبھی سامنے سامنے نہیں. جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو معراج پہ دیکھا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، بخاری کی حدیث ہے، کہ وہ جھوٹا ہے جو یہ کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، آپ نے فرمایا وہ تو نور ہے، میں کیسے اس کو دیکھ سکتا ہوں، میں نے تو نور دیکھا، بس میں نے نور دیکھا. یعنی اللہ تعالیٰ کی جو جو پہلی والی بات کو کاٹ دیں، صرف یہ لکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے بس نور دیکھا، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو حجاب تھا وہ نور ہے، اور وہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اللہ کو نہیں دیکھا. یہ تو اللہ تعالیٰ سے جب جو جنتی جنت میں جائیں گے وہ پھر اللہ ان کو وہ طاقت دے گا کہ بغیر بیچ میں کسی آڑ کے اللہ تعالیٰ ان سے کلام فرمائے گا. اتنا بڑا شرف ہوگا کسی انسان کے لیے، کیونکہ دنیا میں یہ شرف پیغمبروں کو بھی نہیں ملا ہے، جو اللہ تعالیٰ جنتیوں کو اور وہاں پہ جو ان میں عام لوگ بھی ہوں گے، یعنی نبی اولیاء اور وہ تو ہوں گے، عام لوگ بھی ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار عطا فرمائیں گے، اور فرشتوں نے بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا ہوا، ٹھیک ہے؟ کسی نے اللہ کو نہیں دیکھا. اللہ تعالیٰ اس دن یہ بڑی اس کی رحمت ہوگی اور بہت بڑی ایک نعمت ہوگی اللہ کو دیکھنا. تو بے ورائے حجاب اللہ تعالیٰ نے کرام فرمایا. یہ اللہ جو ہے نا وہ تینوں آپشن کے ساتھ جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ پہلی ہم نے دیکھی وحین، نمبر ٹو ہم نے دیکھی میں ورائے حجاب، نمبر تھری او یرسل رسولا، یا وہ بھیجے کوئی پہنچانے والا. رسول سے مراد یہاں پہ کون ہے؟ فرشتے. یا کسی فرشتے کو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ، تو وہ اللہ کے اذن سے وحی کرتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اللہ کی اجازت سے. کیونکہ ایک دفعہ جبرائیل علیہ السلام کچھ عرصے بعد آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ بار بار کیوں نہیں آتے، جلدی جلدی کیوں نہیں آتے، تو فرمایا صرف ہم اللہ کے حکم سے اترتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے وحی دے کر جو اللہ کے اذن سے آتا ہے، اللہ جو چاہتا ہے وہ اتارتا ہے. پھر اس سورت کی نمبر تھری جو یہ سورت ہے نا، اس کی بھی دو قسمیں ہیں. نمبر ون قسم کے فرشتہ انسانی صورت میں آئے، جو کہ ہم نے حدیث جبرائیل میں پڑھا ہوا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ مسجد میں تھے، صحابہ بھی بیٹھے تھے، صحابہ نے بھی دیکھا کہ آئے ہیں اور اس طرح انہوں نے بیٹھے ہیں، اور پھر انہوں نے پوچھا ہے ایمان کیا، اسلام کیا، احسان کیا، مطلب یہ سارے کوسچنز انہوں نے پوچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. तो वो फिर उठ के चले गए वो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि ये जिब्राईल अलैहिस्सलाम थे। ये सूरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बहुत ही आसान थी। और दूसरी, मैंने आपको पहले भी बताया था कि घंटी की सी आवाज ही आपको आती थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को देख नहीं रहे लेकिन वही उतरती थी आपके ऊपर और पसीना आपको आता था, सर्दियों में भी पसीना आता था। किसी जानवर के ऊपर होता था वो जानवर बैठ जाता था, इतना बोझ होता था वही का, वो भी फरिश्ते के जरिए आती थी मगर आपके दिल के ऊपर इस तरह से इल्का डाली जाती थी। अच्छा, अब जो पहली सूरत है और जो दूसरी सूरत है, ये सूरतें हैं जो वही की, जो जिसको वही खफी कहते हैं, जिनमें जो हदीस है। और जो ये तीसरी सूरत है, ये जो फरिश्ता दिल पे डालता है, फरिश्ता लेकर आता है इस तरह से, ये कुरान है। अब जो लोग कहते हैं ना मुनकिरीन हदीस है, जो हदीस को नहीं मानते, तो फिर वो बताएं कि जो पहली सूरत है, जो ख्वाब की सूरत है, ये सूरत है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब अपने बयान फरमाया हदीस में, वो कहते हैं हम नहीं मानते। तो अल्लाह ताला ने तो फरमाया, अल्लाह ने इस तरह से भी कलाम फरमाया, हमारी अंति को अनिल हवा, अल्लाह ताला ने सूरह नजम में फरमाया कि हमारा नबी जो है ना अपनी ख्वाहिश से नहीं बात करता कि अपनी मर्जी से जो मर्जी बोले, नहीं वो भी वो ही बोलता है तो जो अल्लाह ने वही की होती। इन्नहु अलियुन हकीम, यकीनन वो बुलंद भी है, हिकमत वाला भी है। ये अल्लाह ताला ने इन सूरतों में कलाम फरमाया अपने नबियों से। और आप ये देखें कि तीनों सूरतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पेश आई, इसीलिए आगे आया वकदालिका, और इसी तरह औहैना इलैका, हमने वही की आपकी तरफ। किस तरह, कोई चीज होती है ना फिर उसके बाद कहा जाता है इसकी तरह, इसी तरह, तो कोई पहले पैटर्न दिखाया जाता है फिर कहा जाता है ना, तो इसी तरह यानी किस तरह, ये जो पिछली आयत के अंदर बात बयान हुई वही के जरिए में वराई हिजाब या फिर कोई रसूल आया यानी कोई फरिश्ता आया जो वही लेकर आया, इसी तरह औहैना इलैका रूहन, हमने वही की आपकी तरफ। रूह से मुराद तीन चीजें ली गई हैं। नंबर वन इंसानी रूह को रूह हम कहते ही हैं। नंबर टू जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो है उनको भी रूहुल अमीन कहा गया ना, सूरह इसमें इन्ना अंज़लना जो है, सूरह कदर जो है इसके अंदर जिब्राइल अलैहिस्सलाम को रूह कहा गया। नंबर थ्री वही को भी रूह कहा गया। देखिए ना, इंसानी रूह है एक चीज, उसके बाद इंसानी रूह के लिए क्या चीज जरूरी है, इंसानी रूह की गिजा क्या है, अल्लाह का कलाम। इंसानी रूह भी अल्लाह की तरफ से आई, अल्लाह ने भूखी, फिर इसकी गिजा अल्लाह का कलाम है, इसलिए उसको भी रूह कहा गया। उसको लाने वाला जो फरिश्ता है उसको भी रूह कहा गया। तो समझ आ रही है ना इंटर रिलेशन इन तीनों चीजों का। यहाँ पे रूह से मुराद फरिश्ता नहीं है, यहाँ पे रूह से मुराद वही है अल्लाह की तरफ से जो वही नाजिल हुई, यानी कुरान भी और उसकी तशरीह भी, नामरीना हमारे मर्द। इसलिए क्योंकि जब आप कजालिका कह रहे हैं तीनों चीजें, तो तीनों में से तो एक चीज है जो कुरान के अल्फाज हैं, बाकी जो ख्वाब के अंदर आए वो तो कुरान के अल्फाज नहीं, वो तो अल्लाह ताला एक ख्वाब दिखाता था जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते थे, या को जो इल्का किया जाता था अल्फाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होते थे मगर उसमें जो कॉन्सेप्ट है वो अल्लाह की तरफ से होता था। ठीक है, समझ आ गई बात। इसी तरह मेराज में जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कलाम हुआ, अल्लाह ताला ने जो कलाम फरमाया वो भी आपके पास हदीस की सूरत में मौजूद है। तो आप जो इनकार करते हैं हदीस का, वो कैसे इनकार करते हैं, वो तो ये हदीस तो वही की एक सूरत है, वही ये खफी है। तो हमने इस तरह आपकी तरफ एक वही की, मिन अमरीना, अपने हुक्म से, इसी तरह जैसे ये बातें गुजरी हैं। मा कुंता तदरी मल किताबु वलल ईमान, इससे पहले तो ऐ नबी आपको भी नहीं पता था कि क्या होती है किताब, वही क्या होती है, ईमान क्या होता है, आपको भी नहीं पता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इसी के खोज के अंदर गारे हिरा में बैठते थे, हाँ आपको नहीं पता था जब तक फरिश्ता नहीं उतरा आपके ऊपर गारे हिरा में और उसने आके बताया और उसके बाद वही का सिलसिला शुरू हुआ। और नबी जो होते थे पहले से उनको इसका मतलब बातें नहीं पता होती थी, कि जो लोग कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिमुल गैब है, अस्तगफिरुल्लाह, उनको गैब की बातें पता है, नहीं आप तो कुरान खुद कह रहा है कि आपको ना किताब का पता था ना ईमान का पता था। तो वही इतना बड़ा इल्म है जो नबियों को दिया जाता है, वो फिर नबी खुद भी वो इल्म लेते हैं और उसके जरिए वो आगे भी लोगों को बताते हैं बातें। खुद नहीं उनको, उनके पास कोई ऐसी पावर्स नहीं होती कि वो उन पावर से देख सकें कि वहां एक जन्नत है, वहां एक जहन्नुम है, वहां पे ऐसा है, ईमान ये है ये। उनके पास अपनी कोई ऐसी सुपर पावर्स नहीं होती, ठीक है, या सुपरलेटिव चीजें उनके पास कोई ऐसी, कोई ऐसी माफ़ुल फितरत, सुपर नेचुरल, सुपरलेटिव नहीं सॉरी, सुपर नेचुरल ऐसी कोई ताकतें नहीं होती। और हम भी ये देखें कि हमें भी कहां पता था कि किताब क्या है, हमें भी कहां पता था ईमान क्या है, हमें तो इस कुरान ने बताया ना, तो यही जो वही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरी उसी से हमें भी पता चला। वलाकिन जालनाहु नूरन नहदी बिही मन नशाउ मिन इबादिना, हमने इसको बनाया नूर, किसको, इस वही को, वही को नूर कहा गया। हमने इस नूर को बनाया, राह दिखाते हैं हम इसके साथ जिसको हम चाहते हैं अपने बंदों में से। यानी एक तो ये कि ये कुरान नूर है, इससे इंसान को रास्ता मिलता है, इंसान को रास्ता नजर आने लगता है। रोशनी से क्या होता है, हर चीज रोशन हो जाती है ना, वो फिर सही चलने लगता है। और जिसकी जिंदगी में नूर ना हो फिर क्या है, वो अंधेरों में, क्योंकि कुरान के सिवा कोई नूर नहीं है, यानी कुरान के सिवा कोई जरिया हिदायत नहीं है। अल्लाह ताला ने फरमाया ना हदी बीही, ही की जमीर किस तरफ जा रही, इस वही की तरफ, कुरान और हदीस, इसके जरिए हम हिदायत देते हैं, किसी और के जरिए नहीं फरमाया हिदायत देते हैं। लोगों के अकवाल हैं, शायरी है, अकवाले जरनी, फलां औलिया के कौल फलां है, उनके जरिए नहीं, इसके जरिए हम हिदायत देते हैं। तो जिसको हिदायत पानी है वो किस तरह पाए, बाइबल पढ़ के नहीं, अफसाने पढ़ के हिदायतें नहीं मिलेंगी, ड्रामे देख के नहीं मिलेंगे, नहीं जी हमें बड़ी रहनुमाई मिल रही, बड़ी गाइडेंस मिलती है जिंदगी में, नहीं, इस कुरान से मिलेगी, इस वही से मिलेगी, कुरान और हदीस से, इसमें दोनों आ गए ना, क्योंकि जान ना हू रूह की तरफ इशारा है, और वो रूह क्या है, वो वही है, वही में दोनों वहियां आ गई, वही है जली और वही है खफी, कुरान और हदीस दोनों, ठीक है। हम इसके जरिए हिदायत देते हैं जिसको हम चाहते हैं अपने बंदों में से। यानी हिदायत का फैसला अल्लाह की तरफ से होता है, अल्लाह देखता है कौन सा दिल है जो हिदायत का तालिब है। अगर हम इस कुरान की तरफ आए और हमें रोशनी मिलनी शुरू हुई, नूर मिलना शुरू हुआ, हमारी जिंदगी में नूर आने शुरू हो गया, हम अंधेरों से निकले, तो इसका मतलब हमें अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि ये उसका फैसला है हमारे लिए, क्योंकि उसने फरमाया मन नशाउ, जिसके लिए हम चाहते हैं, जिसके लिए अल्लाह चाहेगा उसको इसके जरिए हिदायत दे देगा अपने बंदों में। तो हम कहां भटक रहे थे, क्या कर रहे थे, सोचें क्या जिंदगी थी हमारी, ना कुछ अकल, ना कुछ समझ, ना कुछ, छोटी छोटी बातें भी दूसरों से पूछते थे, कोई पता ही नहीं था। और कहां अल्लाह ताला ने इस नूर के जरिए हमें रास्ता दिखाया, हमें चलना समझ आ रहा है, हमें दिख रहा है रास्ता। وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, और बेशक ए नबी, इन्नका, आप रहनुमाई करते हैं सीधे रास्ते की तरफ। अब ये क्या बात हुई, अभी तो हम पढ़ रहे थे, हमने पहले पढ़ा इन्नका लातहदी मन अहबबता, ए नबी आप नहीं हिदायत दे सकते जिसको आप चाहें, और यहाँ पे कहा जा रहा है इन्नका लातहदी इला सिराते मुस्तकीम, आप हिदायत देते हैं सिराते मुस्तकीम की। किसी सिस्टर ने सवाल भी पूछा कि क्या बच्चे का नाम हादी रख सकते हैं, कहने लगी मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि नहीं रखना, क्योंकि हादी सिर्फ अल्लाह है। तो अब इसका भी जवाब आज आपको मिल जाएगा। देखें, याद रखें, हिदायत दो तरह की होती है, हिदायत दो तरह की होती है, ठीक है। इसमें काफी, ये जो हमारे इस सूरत के लेक्चर है ना, काफी याद रखने की चीजें, तो आपको नोट्स एक जगह अलग से बनाने चाहिए इसके। नंबर वन हिदायत क्या होती है, कि किसी का दिल कुफर, शिर्क, बिदत, इन चीजों पे जमा हुआ है, तो कोई उसको दलाइल देता है, समझाता है, वाज करता है, ठीक है, एक ये हिदायत होगी। लेकिन उसका दिल नहीं फेर सकता, बस उसको समझा रहा है, जो कि ये नबियों का काम था, ठीक है। दूसरी हिदायत क्या है, ये इसको भी हिदायत कहते हैं, वो जो उसको समझा रहे हैं, जो उसको बता रहे हैं नबी, जो उसको उस बंदे को जो रास्ता दिखा रहे हैं, उसको रहनुमाई कर रहे हैं, ये भी एक हिदायत है, इसको भी हिदायत ही कहते हैं। नंबर टू हिदायत क्या है, किसी का दिल फेर देना, समझ आई, किसी का दिल फेर देना, और ये सिर्फ अल्लाह ताला का काम है। लेकिन हिदायत ये भी कहलाती है, जो पहली वाली वो भी हिदायत कहलाती है, लेकिन पहली वाली इंसान कर सकता है, दूसरी वाली इंसान के बस में नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के हाथ में है कि वो, जिसको हम हदीस पढ़ी है ना कि इंसान का दिल अल्लाह की दो करीम उंगलियों के दरमियान है, जिधर चाहे उस दिल को फेर दे, वो उलट पुलट कर दे जिधर चाहे। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमाया करते थे, या मुकल्लिबल कुलूब सब्बित कल्बी अला दीन, दिलों के उलट पुलट करने वाले मेरे दिल को दीन पे जमा दे। तो ये सिर्फ अल्लाह का काम है किसी के दिल को अल्लाह हिदायत की तरफ फेर दे। लेकिन अब जो पहली वाली हिदायत मैंने आपको बात की, ये कोई भी कर सकते, यानी नबी भी करते हैं, नबी के बाद आपके उम्मती भी हैं जो लोगों को दलाइल भी देंगे, समझाएंगे भी, वाज भी, दोनों के दिल नरम करने की कोशिश करेंगे, लोगों के दिल इस तरफ मायल करने की कोशिश करेंगे, मगर वो सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, दिलों को फेर नहीं सकते, मगर राह तो दिखा रहे हैं ना, वो भी कह तो रहे हैं ना कि भाई इस तरफ को आ जाओ, ये है सीधा रास्ता। इसलिए उनको भी हादी कहा जाता है, इस माने में कि वो राहबर है, रास्ता दिखाते हैं, बताते हैं, मगर उसके लिए दिल का फेर जाना ये सिर्फ अल्लाह का काम है। तो समझ आ गई ये किस तरह इंसान हादी है और किस तरह फिर अल्लाह हिदायत देने वाला है। सिरात अल्लाह, सिरात अल्लाह का रास्ता, अल्लाह का यानी सिरात मुस्तकीम कौन सा रास्ता है, अल्लाह का रास्ता, सीधा रास्ता, यानी फिर ये जो अल्लाह का रास्ता है उसी के थ्रू जन्नत तक पहुंच सकते हैं। अल्लाह कौन, किस अल्लाह का रास्ता है, अल्लज़ी लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ध। फिर अब सूरत का इख्तिताम किसके ऊपर हो रहा है, अल्लाह ताला की बड़ी कुदरत और उसकी शान के ऊपर, कि ये उस रब का, उस अल्लाह का रास्ता है, ये ऐसे ही वैसे किसी का रास्ता बताया हुआ नहीं है, किसी डॉक्टर ने कोई रास्ता बता दिया, कोई फिलोसोफर ने कोई रास्ता बता दिया, किसी बड़े बंदे दुनिया में जो होते हैं बड़े अकलमंद लोग, भाई बहुत अकलमंद है, बड़ा इंटेलेक्चुअल है, उसने कोई रास्ता बता दिया, नहीं उनके रास्ता नहीं है ये रास्ता सोचो किसका है, जिसका लहू मा फिस समावाति मा फिल अर्ध, सोचो किस अजीम रब के रास्ते की बात हो रही है, उस रास्ते पर चलने की तरफ बुलाया जा रहा है, उसका रास्ता जो मालिक है, जो कुछ आसमानों में और जो कुछ जमीन में, उसका अला सुन लो इलाही तस्वीरुल उमूर, उसी की तरफ लौटते हैं सब काम, सारे कामों का अंजाम उसके हाथ में है, सारे काम लौटने उसकी तरफ है, सारे काम उसी के इज्जत से होते हैं, सब कुछ उसकी तरफ लौटना, इंसान के अच्छे बुरे आमाल भी उसकी तरफ लौटते हैं, इंसानों ने खुद भी उसकी तरफ लौटना, वो उस कुदरतों वाले रब का रास्ता है जिसकी तरफ ए नबी आप बुला रहे हैं लोगों को, तो लोग इसको छोटी बात ना समझें, सिराते मुस्तकीम को लोग इसको ऐसे ही बिलिटल ना करें, वो सिराते मुस्तकीम क्या है, नहीं, जिस सिराते मुस्तकीम की हम दुआएं करते हैं दिन में कितनी दफा के अल्लाह हमें इसके ऊपर चला दे, वो ऐसे ही छोटा मोटा रास्ता थोड़ा ही है, वो उस अल्लाह का रास्ता है, उस रब का रास्ता है। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। तिलावत सुनिए।
ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور.